नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन द्वारा भेजे गए G20 रात्रि भोज निमंत्रण पर विपक्ष की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया है, जिसमें राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति कहा गया है। बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस को भारत शब्द से कोई समस्या है क्या। असम के CM हेमंता बिस्वा सरमा ने अपने एक्स पर रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा है और कहा कि हमारी सभ्यता पूरी मजबूती से अमृतकाल की ओर बढ़ रही है। साल 2015 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश को इंडिया के बजाय भारत नहीं कहा जाना चाहिए। ये जवाब एक जनहित याचिका को लेकर दिया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए गणतंत्र को भारत कहे जाने की मांग की गई थी। पूर्व जजों और नौकरशाहों समेत 262 नागरिकों ने CGI DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उनसे सनातन धर्म को नष्ट करने वाली द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। पत्र लिखने वालों में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस रहे SN डिंगरा भी शामिल है। पत्र में कहा गया कि स्टालिन ने हेट स्पीच देने के बाद माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। सारे लोग स्टालिन की टिप्पणियों से चिंतित हैं। ये टिप्पणियां भारत की एक बड़ी आबादी के खिलाफ हेट स्पीच जैसा है। ये भारत के संविधान की मूल भावना पर प्रहार करती है। 262 नागरिकों के मुताबिक देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा करने के लिए ऐसी हरकतों के खिलाफ कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। सरकार ने ऐसा करके अदालत के आदेश की अवमानना की है। चिट्ठी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन ले। हम आपसे तत्काल उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को यहां धूमनगंज, तेलियरगंज समेत कई जगहों पर छापेमारी की। NIA की एक टीम शिवकुटी थाना क्षेत्र में तेलियरगंज के महदोरी में सामाजिक कार्यकर्ता सीमा आजाद के घर पर तलाशी अभियान चला रही है। सीमा आजाद के पति विश्व विजय ने मीडिया से कहा, NIA क्या तलाशी कर रही है, ये तो NIA ही बताएगी, लेकिन देश में होने जा रहे चुनावों को देखते हुए मौजूदा सरकार NIA जैसी संस्थानों के माध्यम से लोगों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा, NIA ने हमें तलाशी वारंट दिखाया और अब इनकी टीम हमारे घर में एक एक पन्ने को खंगाल रही है। इन लोगों ने हमारा लैपटॉप, मोबाइल फोन सुबह से बंद कर रखा है। इस बीच पूर्व IPS और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर सीमा आजाद के घर पहुंचे हैं और वह सीमा आजाद के घर के बाहर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराकर कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तलब किया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने भारतीय जनता पार्टी नेता हरीश खुराना की अर्जी पर 18 नवम्बर को सुनीता केजरीवाल को आरोपों के तौर पर तलब किया। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश ने 29 अगस्त को पारित एक आदेश में कहा, शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद इस अदालत की सुविचारित राय है कि आरोपी सुनीता केजरीवाल पत्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसीलिए आरोपी को तदनुसार तलब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। ये मामला फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा है। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने खालिद की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुपस्थित रहने के कारण मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। इससे पहले जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने 9 अगस्त को खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के 18 अक्टूबर 2022 के फैसले को चुनौती दी है। ये याचिका जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच के समक्ष आई थी। हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष 18 अक्टूबर को ये कहते हुए खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि वह दूसरे आरोपियों के लगातार संपर्क में था। उसके ऊपर लगे आरोप पहली नजर में सही नजर आते हैं। हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि खालिद को UAPA के तहत आरोपी माना जा सकता है। न्यू टाउनटन इलाके में फ्लैट खरीदने का वायदा कर बुजुर्गों को ठगने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को ईडी ने अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया है। नुसरत को 12 सितंबर को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। माना जा रहा है कि एजेंसी उनका बयान दर्ज करेगी। ईडी ने बुजुर्गों के एक समूह की हाल की शिकायत पर संज्ञान लेकर नुसरत जहां पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। समूह ने एक रियल एस्टेट कंपनी पर न्यू टाउन इलाके में फ्लैट का वादा कर इन लोगों को ठगने का आरोप लगाया है। हालांकि नुसरत जहां ने धोखाधड़ी में शामिल होने से इनकार किया था। सांसद का दावा है कि उन्होंने मार्च 2017 में ही कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। बसिरहाट से तृणमूल की लोकसभा सदस्य नुसरत जहां ने कहा था कि उन्होंने कंपनी से लोन लिया था, ये 2017 में ब्याज समेत चुका दिया गया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।